चलिए जी, सूरत सफ शुरू करेंगे। सूरत सफ का बुनियादी थीम क्या है? हर मुसलमान एक ईंट है और जोड़ने वाली चीज एक दूसरे से मोहब्बत है। सूरत के आगाज में ही आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत तरीके से इसकी बात की, और इसी सूरत में हमारी आज की आयात तदब्बुर भी आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम एक एक लफ्ज पे गौर करें। अगर पिछला हिस्सा जो अभी तक पारे का हम कर चुके उसको आपके सामने रख लूँ, तो बात हुई थी कि ये पारा मोहब्बतों के इम्तिहान से भरा हुआ है। पहली सूरत में खौला नाम की एक औरत के सामने एक इशू था कि एक तरफ अल्लाह का दीन है और दूसरी तरफ शौहर की मुंह से निकली हुई बात है। उसने इसका हल लोगों के सामने शिकवा शिकायत करना नहीं, बल्कि तश्तकी इल्लाही का फैसला किया। अल्लाह ने उसकी मदद की। हमारे लिए अमल की बात क्या थी कि शिकवे शिकायतें करने से ज्यादा अल्लाह के आगे सर झुका दें तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। और ये भी पता चला कि है कुछ मसाइल ऐसे ही होते हैं जिसका हल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में होता है, उससे इंसान मांग ले। फिर उसके बाद हमने सूरत हशर में ये सीखा कि जब अल्लाह मुसलमानों का साथ देता है तो ऐसे हालात पैदा कर देता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता इंसान ने। फिर इसके बाद सूरत मुमताहिना में हमने ये चीज़ पढ़ ली कि औलाद और बीवी बच्चों और माल की मोहब्बत जब अल्लाह के मुकाबले में सामने आती है तो वो हमारे लिए आजमाइश बन जाते हैं। अब है सूरत सफ। सफ क्या है? सफ़े बांधना, ऑर्गेनाइज होने की बात है। पीछे सूरत सौफात पढ़ चुके, यहाँ सफ है। वहाँ कुछ फरिश्तों की बातें थी, यहाँ एक उम्मत की बात है। पैगाम फिर यही है कि उम्मत मुस्लिमा को ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। सफ़ों का इत्तेहाद उम्मत में इत्तेहाद लाने का जरिया होता है। आइए पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी इन आयात पे अमल वाला बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, वो गालिब और हकीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो इसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। एक आयत में अल्लाह की पसंद का और दूसरी आयत में उसकी नापसंदीदगी का जिक्र हो गया। इसको सुनकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई सिर्फ अल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लगती या इंसानों को अच्छा लगता है? मसलन जो कहे वो खुद ना करें, क्या ये बात इंसानों को अच्छी लगती है? दुनिया में कोई ताजिर कहे कुछ और पेश कुछ और करे, किसी को अच्छा लगेगा? तो लिखिए, जो बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती वो अल्लाह के बंदों को भी अच्छी नहीं लगती। आज उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ना होना और एक दूसरे से अलग होना, उसी का यहाँ तस्करा करके बता दिया कि सीसा पिलाई दीवार कब बनेगी? जब कोई थोड़ा सब्र करेगा। थोड़ी सी हम इस पे बात करते हैं। आप अपने नोट्स में एक छोटी सी दीवार बनाएं, छोटी छोटी ईंटों से जोड़कर टुकड़ियां जोड़े। आप देखिए कि दीवार कब बनती है, जब एक ईंट के बराबर दूसरी ईंट रखी जाए, फिर उसके ऊपर भी दूसरी तीसरी। अगर आप नीचे पड़ी ईंट को देखें तो कितनी ईंटों का बोझ उसने उठाया हुआ, पिसी हुई है ना, दबी हुई है, लेकिन वो अगर अपनी जगह से हिले तो क्या होगा, वो ऊपर की ईंटें भी गिर जाएंगी। उम्मत मुस्लिमा और दीन का खास तौर पे यहाँ जो तकाजा है वो क्या है कि आपस में इस तरह जुड़ के रहो जैसे ईंटें आपस में जुड़ के रहती हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाले। कभी आपने पाकिस्तान में घर बनते देखे हो ना, कभी कोई ईंट थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो सकती है, या बाद बार ठोकर लग जाती है तो ईंट कहीं से गिर चुकी होती है, उसको पूरा कौन सी चीज करती है? सीमेंट। ये करो, साथ रहते हुए कमी बेशियां होंगी, साथियों में भी होंगी, आप में भी हैं। आप मोहब्बत के प्लस्तर से उसको इवन कर दो, देखने में एक टीम बनी रहे, एक दीवार बनी रहे। क्यों? कि एक फर्द की फतह बाज़ दफा पूरी टीम की फतह होती है। आज उम्मत मुस्लिमा को हमें इस बात की यकीन दहानी करने की जरूरत है कि टुकड़ों में बांटकर हमने उम्मत को किसी काम का ना छोड़ा। कान नम बुनजान मरसूस और सरासर आयत दीन दारों के अमल की आयत है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे अमल वाला बना दे। और याद करो मूसा अलैहिस्सलाम की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने भी इनके दिल टेढ़े कर दिए। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचा। क्यों किए? इसलिए कि अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। आपको डर लगा इस आयत को पढ़ के? मुझे सूरत निसा की आयत याद आ गई, नवल्ली ही मातवल्ला। तुम जिधर का रुख करोगे हम तुम्हें उधर फेर देंगे। घर से गाड़ी निकली, मस्जिद का रुख करेंगे, गाड़ी मस्जिद की तरफ चलेगी और उधर जाना आसान होगा। और अगर आप सिनेमा घर का रुख करेंगे तो वहां आसान होगा। अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, किसी को मजबूर नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, सूरत बकरा में पढ़ चुके आयतुल कुर्सी के बाद। जैसे अल्लाह किसी को दीन में बुलाने पे जबरदस्ती नहीं करता ना मजबूरी में, इसी तरह अल्लाह किसी को दीन में ठहरने पे भी मजबूर नहीं करता। जो आए शौक से आए और जो जाए शौक से जाए। अल्लाह जबरदस्ती नहीं रोकता। आप इमेजिनेशन में लाए ना, कोई रिश्तेदार है वो नाराज हो रहा है, फिर आप मिन्नतें करते हैं, अच्छा अच्छा माफ कर दे, अच्छा ना जाए प्लीज नहीं, अच्छा फिर नहीं होगा, वो नहीं होगा, खैर मामला रफा दफा हो गया। थोड़ी देर गुजरी, फिर किसी बात का उसने इशू बना लिया, फिर आप कहेंगे प्लीज प्लीज ये वो। दो तीन बार एक सेम पर्सन अगर आपसे बार बार उठे तो आप आमतौर पे फिर क्या करते हैं? कहते हैं इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, अभी जाने दो इसको। अल्लाह का भी यही मामला है। जब हमारे दिल टेढ़े होते हैं ना, तो याद रखिए उसका सबसे पहला मरहला ये आता है कि जो हम कर रहे होते हैं ना वो सब हमें बेकार दिखने लगता है। अल्लाह ताला हिदायत के बाद टेढ़ा ना करे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, पढ़ लीजिए कि अल्लाह हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उन्होंने कही थी कि बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ इस तौरात की जो मुझसे पहले आई भी मौजूद है, और बिशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और जिसका नाम अहमद होगा। कितने हम में से जो ये आयत क्रिश्चियंस तक पहुंचाए? कुरान के लफ्ज हैं, कुरान को वो भी मानते हैं। हजरत ईसा कह रहे हैं कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा, तो इसके मानने में उनको क्या तामुल होगा? मगर जब वो इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए तो उन्होंने कहा यह तो सरीह धोखा है। वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, अब भला उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे बख्तान बांधे, हालांकि इसे इस्लाम यानी अल्लाह के आगे सरे इताअत झुका देने की दावत दी जा रही हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। और बात यह है, यहां से हमारी आयात तदब्बुर, युरीदून लियुतफियू नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। सूरह तौबा याद आएगी आपको, इसी से मिलते जुलते अल्फाज वहां भी हैं। ये लोग अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह का नूर क्या है? इस्लाम। और अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने नूर को पूरा फैलाकर रहेगा, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार हो। सच बताइए, क्या आज इस्लाम गालिब है कि मगलूब दिखता है? इस्लाम तो हमेशा ही गालिब रहा, मुसलमान मगलूब है आजकल। लिखिए, जब इस्लाम कुछ और मुसलमान कुछ और हो जाए तो कौम का जवाल शुरू हो जाता है। इस्लाम कभी नहीं दबा, कभी नहीं दबेगा, इस्लाम ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन जब इस्लाम पे अमल करने वाले मुसलमान इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, उससे याद रखिए कि दुनिया में बज़ाहिर इस्लाम दबा हुआ दिखता है। करना क्या है? इस इस्लाम को आगे लेकर आना है। आज फिर वही वक्त आ गया जो हर पारे में हमें याद दिला रहा है कि इस्लाम के लिए उठो। ये गालिब है, ये मक्खन है, जिस हाथ ने इसको दबा के लस्सी के अंदर डबोने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हुआ। जब भी मुसलमानों को नुकसान दिया तो उन्होंने दिया जिनके हाथ में शम्मा है। पीछे भी आपको मिसाल दी थी, ये मोमबत्ती है मेरे हाथ में, जल रही है, आप तो वहां खड़े हैं, बुझाने की कोशिश करें, कितनी को भूख चाहिए होगी जो यहां तक पहुंचे। शायद आपकी भूख तो इधर पहुंचेगी भी नहीं। हाँ, एक फूंक मारूंगी, मेरे हाथ से बुझ जाएगी, ये मेरे हाथ में, इसको मैं आपकी भूखों से बचाऊं, प्रोटेक्ट करूं, इस कवर करूं, ये मैं इसकी हिफाजत करूंगी तो ये बचेगा। आज के मुसलमान को खतरा गैरों से नहीं, अपनों से। सीधी सी बात है, आपने मैंने आज इस इस्लाम के लिए उठना है। आज फिर वही दौर दोबारा आ गया कि चारों तरफ दुश्मनों ने इस्लाम के खिलाफ तोपें गाड़ ली और हम मथे से इत्मीनान से बैठे हुए। असल बात यह कि मैं और आप इसके लिए सोचने वाले तो बन जाएं, तड़पने वाले तो हो जाएं, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है। आज दोबारा हम सबको इस चीज की जरूरत है जो अगली आयत में कही गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुन्जीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुमको बताऊं वो तिजारत जो तुम्हें अजाब अलीम से बचा ले? जवाब दें, जी अल्लाह जरूर बताइए। क्या है वो? नंबर एक, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। लाते हैं, कहिए शोर से, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगली चीज, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और अबदी क्याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। वहां के भी तो घर की फिक्र करो। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। वो उखरा तो है बू ना हो, और वो दूसरी चीज जो तुम चाहते हो वो भी तुमको देगा। अल्लाह की तरफ से नुसरत और करीब ही से हासिल होने वाली फतह, यानी दुनिया भी वही देगा। ऐ नबी, अहले ईमान को बशारत दे दो, करो क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, कूनू अंसारुल्लाही कमा काला ईसा इब्नु मरियम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के मददगार बनो। क्या जवाब है? कौन अंसारुल्लाह में शामिल होना चाहता है? सोचेंगे, मशवरा करेंगे, किसी से इजाजत लेंगे, फिर अंसारुल्लाह बनेंगे? नहीं, दुआ करें अल्लाह हमें अंसारुल्लाह बना ले। जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों को खिताब करके कहा था, कौन है अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार, और हवारियों ने जवाब दिया था, हम हैं अल्लाह के मददगार। इस वक्त बनी इसराइल का एक गिरोह ईमान लाया और दूसरे गिरोह ने इनकार किया, फिर हमने ईमान लाने वालों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में ताईद की, और वही गालिब होकर रहे। तो क्या पता चला आपको मुझे? आज फिर एक कॉल आ गई, अल्लाह के रास्ते के मददगार बन जाओ। सहाबा ने तो इस पे लब्बैक कहा, उन्होंने तो अल्लाह के रास्ते में जान माल वक्त लगाने को अपने लिए तिजारत समझा। फर्क क्या होता है दोनों में? ताजिर जब पैसा किसी जगह लगाता है तो क्या सोच के लगाता है? आज एक लगाऊंगा 10 मिलेंगे, 10 लगाऊंगा तो 100 में बदलेंगे। जब आप दीन के काम को अपने लिए एक तिजारत समझ लेते हैं तो फिर लगाना मुश्किल नहीं लगता। आप कहते हैं इन्वेस्ट ही हो रहा है ना। आप देखिए, बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, बाद दफा उनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते। क्यों? सारे ही लगाए, सारे का सौदा खरीद लिया, अब बिकेगा तो पैसे वापस आएंगे। अकलमंद होते हैं। बीवी के, तुम तो बहुत फजूल खर्चो, तुम तो अपने हाथ में पैसे ही नहीं रखते। वो कहेगा, बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। मैंने जो खर्च किया, जो पैसा मैंने लगाया, वो तो कल वापस आना है, और तूने जो लगाना है वो तो डूब गया। बस ये है अल्लाह के रास्ते में कुछ देने का नुक्ता आगाज, दे नहीं रही, ले रही हूं, और ले भी कैसे रही हूं, इन्वेस्ट कर रही हूं। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, अब बताइए कौन अल्लाह से ये तिजारत करना चाहता है? अबू दहदा ने अगर 600 खजूरों वाला बाग दे दिया तो क्या नुकसान का सौदा था? याद रखिए, नेकी का एक वक्त होता है, हर नेकी हमेशा नहीं रहती, हर जरूरत भी हमेशा नहीं रहती। कल नबी सल्लम के दौर में जिस तरह इस्लाम को लेकर माल जान लगाने की जरूरत थी, वो बाद में नहीं रही। सहाबा के पास माले गनीमत इतना आने लग गया कि वो रोते थे, कहते थे कल अल्लाह के नबी के साथ कितना मौका आता था, घर का सामान ले आओ, आधे घर का सामान ले आओ, उस्मान फिल जन्ना, 100 ऊंटों को भर के सामान से गल्ले का दिया, फिर 100 ऊंट दिए, 900 ऊंट दिए हजरत उस्मान गनी ने तबूक के मौके पे इस्लाम के लिए, ऊपर से नीचे तक लदे फदे। आज के 900 कंटेनर भी उसका बराबर नहीं हो सकते। کیوں؟ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. جس کو تو عذاب علیم یاد رہے گا اس کے لیے تو یہ بات بڑی آسان ہوگی، اور جس کو صرف دنیا ہوگی تو وہ جمع تفریق نقصان پوچھے گا، کیا دوں کیا نہ دوں. سچ بتائیے، اس آیت پہ غور کریں کہ آج یطفی نور اللہ بافواہہم کی کوئی صورت نہیں نظر آتی. سبھی تو اسلام کو سخت اور بہت ہی غلط مذہب ثابت کرنے پہ تلے ہوئے دکھتے ہیں. کیا آج بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جان مال وقت تن من دھن لگا دیں؟ کہ اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے اس دین کو، جس کو اللہ نے یہاں بالہدا و دین الحق کہا، کیا اس کو میری آپ کی ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے؟ اور ہم نے کسی کو نہیں دے کے آنا، ہم نے اپنے اوپر لگانا ہے کیونکہ ہم خود ہی ضرورت مند ہیں. دیکھیے، ایک وقت ہوتا ہے بندہ مال جا کے کسی کو دے، مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، اس وقت تو ہمیں اپنے اوپر لگانا ہے. جب ہم اپنی ذات پہ اللہ کے دین کے لیے مال لگاتے ہیں نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف مال نہیں لگا رہے، وقت بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے. سارے ہی پیسہ دے دیں اور خود نہ ہو وہاں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسلام کو مال کے ساتھ جان، وقت، سکلز، ایفرٹس کی ضرورت ہے، تاکہ لِيُسْخِرَهُ لِلدِّينِ كُلِّ، تاکہ اسلام پوری دنیا پہ دکھے. شرط ایک ہے، تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال اور جان لگے گا پھر ہوگا. یاد رکھیے، صحابہ نے اپنا پسینہ بہایا اور خون گرایا تو اسلام کی بنیاد اتنی پختہ ہوئی کہ الحمدللہ قیامت تک باقی رہے گی. ہم جان بچاتے رہیں گے تو یہ بچنی تو پھر بھی نہیں، پھر دینی تو پڑے گی اس کو جس نے دی تھی ہمیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چو می گویم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. کہتے ہیں میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے لرستا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خود کو مسلمان کہنے کے بعد مشکلات کیا آتی ہیں، وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو بیاری. اللہ کا تو یہ تقاضا ہے کہ تجاہدون بی اموالکم و انفسکم. آج کے دور میں نیوٹرل بن کے بیٹھے رہنا بگ کرائم ہے. دیکھیے، دو لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ کا بیچ میں پڑنے سے لڑائی رک جاتی ہے اور آپ بیٹھے رہے پیس میکر پیس میکر، جرم کیا کہ فائدہ کیا؟ جرم ہے یہ. آج کے دور میں صرف نماز روزہ کر کے اپنے بیوی بچوں کو روٹی کمانا یہ جرم ہے. اسی کی سزا دیکھیے، اب دن بدن آپ دیکھتے رہیے، اپنے ملکوں میں یہ مسئلے شروع ہونے شروع ہو گئے. مسلمانوں کے ملک لڑنے لگ گئے آپس میں، کبھی تو غیروں کے ساتھ معاملے چلتے تھے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس بات کا یقین دے دیں. اور یاد رکھیے کہ جہاد ہل جل کا نام ہے، مل جل کر کام کرنے کا نام ہے، جمود کو توڑنے کی کوششیں کرنی. یہ ایک ایسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیں تو اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے بندہ پہنچ جاتا ہے. آج چند منٹ دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل لگتا ہے، کل جب سورج سر پہ چمک رہا ہوگا اس وقت کیسے کھڑے ہوں گے؟ آج ہم اس کتاب کو اتنے پرسکون ماحول میں پڑھ رہے ہیں تو سکون سے پڑھ رہے ہیں، صرف ایسی بند ہو جائیں، دیکھیے کتنی گھٹن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کل دو چار نہ ہی آئیں کہ وہاں گھبراہٹ بڑی ہوتی ہے، لیکن کیا ہم اسلام کے لیے واقعی ایسے راستے بنا رہے ہیں کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کا دین نکلے؟ واقعی اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ سرکشیوں کو چھوڑ کر سر ڈال دیے جائیں، اور سر سجدوں میں ہوں اور آنکھوں پہ آنسو ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ پھر سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. آج امت کو اس سبق کے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ یا کا نابدو کی تسبیح بھی اب فائدہ نہیں دے رہی کہ سرکشیاں بہت ہیں. اب واپ بنو، اپنے وقت لگاؤ، اپنی محنت کرو، لکھیے اپنے لیے کیا چیز ہے جو مجھے آنے نہیں دیتی، بس اس کو لکھ کر اس پہ کام کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کے میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. اس کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ شہوات ہے، اگلی سورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں حدیث سن لیجئے آج کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے، خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات. جنت ناپسندیدہ چیزوں یعنی تکلیفوں سے گھیری ہوئی ہے، اور جہنم نفسانی خواہشوں سے گھری ہوئی ہے. یعنی جس کو جنت میں جانا ہے उसको नफ्स पे बोझ पड़ने वाली चीजों से गुजरना ही पड़ेगा, पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जिसको जहन्नम में जाना है, बस एक काम, नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करते रहो। देखिए, ये है स्लोप, ये है गाड़ी, आप इस गाड़ी को नीचे से ऊपर ला रहे हैं। मुश्किल होगा ना, ऊपर लाना मुश्किल है। आपने पहाड़ी इलाकों में कभी सफर किया हो, फोर व्हील गाड़ियां, जीपें चलती हैं, क्यों कि गाड़ी मजबूत है। अब ये गाड़ी यहां आ गई, मुश्किल 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 मुश्किल, कोई ड्राइवर यहां गाड़ी रोक सकता है? अभी ये देखिए, क्या पिन छोड़ूंगी, गिरेगी ना। स्लोप पे जब चढ़ जाता है ना बंदा, फिर वो नीचे या फिर ऊपर, जो बीच में रुक जाते हैं ना, वो गिर जाते हैं। चलिए, अब यहां से चढ़े चढ़े अल्हम्दुलिल्लाह यहां पहुंच गए। मुश्किल तो हुई, पर आप कहते हैं नीचे मुश्किल ज्यादा होती है, ग्रेविटी से हम करीब होते हैं। जितना हम ऊपर जाते हैं ना, तो ग्रेविटी का असर कम होता है, तो मुश्किल कम हो जाती है। अब आप यहां गए, अब वापसी का रास्ता है, अब क्या करना है? सिर्फ ब्रेक से पांव उठा दें। ये ऊपर क्या था, खुफ्फतिल जन्नत बिल मकारे, मुश्किल मुश्किल मुश्किल। ऊपर जाना है, जन्नत लेनी है, तो मुश्किल से नहीं पड़ेगी। और अगर जहन्नुम में जाना है, बस ब्रेक से पांव उठाएं आप सीधे, खुफ्फतिन नारु बिशहवात। तो ये ख्वाहिश परस्ती जो है ना, ये बंदे को जन्नत से दूर करती है। अल्लाह ताला मेरी आपकी मदद फरमाए इससे रुकने पे। आज की दुआ में सूरत हशर की आयत 10 हम पढ़ चुके, जिससे हमने सीखा कि दिलों के गिल भी दूर करने हैं और दूसरे ईमान वालों के लिए दुआएं करनी है। सूरत मुमतहना में हमने सीखा रब पे तवक्कुल करना है, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीन कफरू वाग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और आगे हम सूरह तहरीम की दो खूबसूरत दुआएं पढ़ेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वाग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। कि अल्लाह हमारे नूर को पूरा कर दे। और ये जो हमने कुरान का नूर शुरू किया, अल्लाह इसको हमारी इस कब्र के हमारे पुल सरात तक हमारे साथ रखना, और हमें बख्श दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, तू हर चीज पे कदीर है। और अगली दुआ, रब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह अपने पास ही जन्नत में कहीं घर बना दे। देखिए, घर 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 घर, इस पूरे पारे में घर की बातें हो रही हैं। अभी आगे भी दो सूरतों में होनी है, अभी खत्म नहीं हुई। माल और औलाद के तकाजे अल्लाह के तकाजे पूरे करने नहीं देते, करें क्या? हुफ्फतिल जन्नत बिल मकारे, सब्र करें, नफ्स पे काबू पाए, अल्लाह से मदद मांगिए। फिर इसी तरह देखिए, हमारा बहुत सारा वक्त जो हमारे घरों में जाता है, उसकी वजह डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। चीजें ज्यादा है, मिलती नहीं, या कम भी है तो बिखरी हुई है। तो आज की टाइम मैनेजमेंट टिप, अपने जरूरी कागजात और रिहाइश के सामान को मुनज्जम और मुरतब रखें, ताकि इनकी तलाश में वक्त जाया ना हो। जिनको दीन के लिए भागना होता है ना, वो फिर चीजें ऐसे नहीं रखते कि याद ही ना रहे कि रखी भी थी, उलझी नहीं रहती उनकी जिंदगी। थोड़ा करें, मुख्तसिर करें, आंखों के सामने चीजें रखें, और आप देखेंगे जब आप ऑर्गेनाइज करके चीजें रखते हैं, तो बहुत सारा वक्त बच जाता है। और आज की टाइम वेस्टर टिप क्या है, ये सोचना कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है। ये बात आपको भी समझ आएगी सूरत मुनाफिकून की आखिरी आयतों को पढ़ते हुए। और काबिले तकलीद शख्सियत फिरौन की बीवी आसिया कौन थी, आइए अब अगली सूरतों में इनको पढ़ते हैं। बस यहां ये बात कहूंगी कि हल दुल्लुकुम अला तिजारतिन, इस पुकार को सुनकर आपके दिल से क्या जवाब आता है, इसको आप अपने साथ लिख लें। क्योंकि कुरान पढ़ने और सुनने के दौरान जो नेकी के मौके नजर आते हैं, वो बाद में नहीं नजर आते,